ಜಯ ಗೋವಿಂದ ನವಲ್ಲಭ ಗುರುವರ ದಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನ ಯಶೋದಾನಂದನ ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಶೋದಾನಂದನ ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಗಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಮುನ ತೀರ ಮಮಕಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಜಯ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೇ ಜಯ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧೇ ಜಯ ರಾಧೇ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ನಿತಾಯ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ
ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸಂ ततो जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी
हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 72 72वां श्लोक संख्या 4 दोहराइए सब मेरे विषय
त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ज्ञायञ्च भद्रनशने सुचयो गृणन्ति ज्ञायञ्च भद्रनशने सुचयो गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम् आशासते यदि त आशिष ईशनान्ये आशासते यदि त आशिष ईशनान्ये तत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ज्ञायञ्च भद्रनशने सुचयो गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम् आशासते यदि त आशिष ईशनान्ये
बोलिए
श्लोक के शब्दार्थ
इस प्रकार है, दोहराइए।
त्वत्
तुम्हारे पादुके खड़ाओ को अविरतम निरंतर परी पूर्णतया ये जो चरन्ति सेवा करते हैं, ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, अभद्र अशुभ वस्तुओं के नशने विनाश करने वाली, शुचय पवित्र गृणन्ति तथा शब्दों द्वारा वर्णन करते हैं, विदन्ति विन्दन्ति प्राप्त करते हैं, ते वे कमलनाभ हे कमलनाभ भव भौतिक जीवन का अपवर्गम मोक्ष आशा सते इच्छा लगाए रहते हैं, यदि यदि ते वे आशीष इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, ईश हे प्रभु न नहीं अन्य अन्य पुरुष। अनुवाद ध्यान से सुनिए। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कमलनाथ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनिष्ट करने वाले हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे उसे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। तात्पर्य। इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो इस भौतिक जगत से मुक्ति होना चाहते हैं, न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते। उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों से हो जाती है। जहाँ तक हमारा अर्थात राजा युधिष्ठिर का प्रश्न है, हम तो पूर्णतया आपके चरणों में शरणागत है और आपकी कृपा से आपका साक्षात दर्शन कर पाने के भाग्यशाली है, अतः स्वाभाविक है कि हमें भौतिक ऐश्वर्यों की कोई इच्छा नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप भगवान हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूँ और मैं दुनिया को आपको भगवान के रूप में तथा सामान्य शक्तिशाली ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करने के अंतर को दिखलाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को यह दिखला देना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बहुत सुंदर लाइन है। मैं दुनिया को यह दिखला देना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जिस तरह जड़ों को सींचकर पूरे वृक्ष की शाखाओं पत्तियों तथा फूलों को तुष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन जाता है। अतएव अपने हृदयों से इस तीर को निकालने के लिए हमें इस स्थान पर राजसूय के बहाने ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य सतुर ब्रह्मचारियों एवं देवताओं को बुलाना चाहिए जो सौदो लोकों में निवास करते हैं। जब ऐसी उच्च श्रेणी की भीड़ एकत्र हो जाएगी तो परम आवश्यक हो जाएगा कि सबसे पहले अग्र पूजा के लिए व्यवस्था की जाए और जब उन्हें यह प्रत्यक्ष दिखला दिया जाएगा आप कृष्ण ही भगवान है तो हमारे हृदयों को बेधने वाला तीर निकल जाएगा। जय हो। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामनीयं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितञ्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी विश्वं प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो ये लव पिष्ट रविवार के लव पिष्ट सत्संग सभा में भागवत भगीरथी में स्नान करने आए हुए सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से स्वागत करते हैं। जीवन का अमूल्य समय या तो जीवन का सबसे ज्यादा या तो जीवन का परम लक्ष्य चरम लक्ष्य को जो पाप प्राप्त कराने वाला समय कहीं से भी कुछ भी कहिए तो यही है कि सत्संग में बैठकर संतों के संग में भागवत श्रवण करना। ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि भागवत ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से सुनने को मिल जाता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है, आप सब जानते हैं, इसलिए इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परम सौभाग्य है हम सबका कि भागवत जैसा ग्रंथ प्राप्त होता है। कलयुग में अनेक अनेक धर्म है, अनेक अनेक ग्रंथ हो गए हैं, अनेक अनेक पंथ हो गए हैं। जो व्यक्ति जिस पंथ में जाता है वह व्यक्ति को वही पंथ सबसे श्रेष्ठ लगता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, है ना। सब लोग एक ही मत कहते हैं, आप इधर आ जाइए, आप वह छोड़कर इधर आ जाइए, आप हमारे हो जाइए, है ना। सबका एक ही मत है। सभी लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, कोई व्यक्ति संसार में नास्तिक नहीं हो सकता, कोई नास्तिक है ही नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप है आनंद। हम भगवान का अंश होने के कारण हम सब किस चीज को आनंद को प्राप्त करने के लिए आनंद की खोज कर रहे हैं ना। तो हरेक व्यक्ति आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी संतों की कृपा नहीं होने से, अपनी सुकृति नहीं होने से व्यक्ति भटक जाता है, जीव भटक जाता है। लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से एज इट इज शुद्ध भक्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। अभी शुद्ध घी नहीं मिलता है ना, किसी भी खाने की किसी भी वस्तु शुद्ध नहीं प्राप्त होती। और कली काल में, कलयुग में शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। उन जीवों की सराहना देवता भी करते हैं, शुद्ध ज्ञान शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाना। और भक्तों के संग में बैठकर भागवत का कुछ बूंद भी वैसा ही है जैसे रण में कोई गया हो, दो तीन दिन से प्यासा हो, रण में कोई दो बूंद दे दे, है ना। दो तीन दिन के प्यासे व्यक्ति को अगर एक बोतल, एक लीटर का बोतल दिया जाए तो भी कम पड़ेगा, है ना। एक लीटर हम कभी कभी एकादशी का उपवास निर्जला करते हैं तो शाम को कभी कभी पानी पीते है तो तीन चार पांच घूट तक तो ऐसा ही लगता है कि हमने कुछ पिया ही नहीं, मुंह में कुछ गया ही नहीं। जैसे तपा हुआ लोहा में कोई बूंद डालेगा छूमंतर हो जाएगा, ऐसे ही जठराग्नि में छूमंतर हो जाता है ना, ऐसे ही हालत हो जाती है। तो कलयुग में भी ऐसा ही है, कलयुग के जीवों को श्रीमद् भागवत का सप्ताह में एक घंटा सत्संग प्राप्त हो जाना भागवत में, तो रण में मिला बूंद की तरह ये दुर्लभ है। भागवत पढ़िया भागवत स्थाने स्वामी अनुगत करी कर भागवत, तो महाप्रभु ने कहा है कि भागवत कहाँ सुनना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। वैष्णवों के अनुगत्य में, वैष्णवों के साथ बैठकर भागवत को श्रवण करने की विधि चैतन्य महाप्रभु ने कही है। तो यही हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी की प्रशंसा प्राय होती रहती है। प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है आप जरा विचार कीजिए कि 100 देशों से भी ज्यादा देशों में, कंट्रीज में चलता रहता है सत्संग। यहाँ भागवत खत्म होगा कहीं दूसरे देश में शुरू होगा, कहीं दूसरे देश में पूरा होगा। मंगल आरती भी ऐसे शुरू ही रहती है, गुरु पूजा भी शुरू ही रहती है, भागवत शुरू ही रहता है, कीर्तन शुरू ही रहता है 24 घंटा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। हरेक हरेक कंट्रीज में सेम समय नहीं होता है ना, अलग अलग समय रहता है ना। तो अलग अलग समय के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है 4:30 बजे मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक का, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक का, तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे सत्संग कार्यक्रम, ऐसे हरिनाम कीर्तन वो सब चलता है ना, इसलिए संतगण कहते हैं कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, इंद्र बारिश दे रहा है, पवन देव वायु दे रहा है। अगर वो सब संत विचरण करना बंद कर देंगे, सत्संग करना बंद कर देंगे, संत हरिनाम करना बंद कर देंगे, सब बंद हो जाएगा तो इस पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी, ओले बरसने लगेंगे। तो हम सबका परम सौभाग्य है भागवत सुनने को मिल जाना। तो तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं पद्यावली में कि लोभ से उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। कैसा लोभ? कलयुग है भाई, सब सिखाना पड़ेगा। श्रीपाद चक्रवर्ती बात कहते हैं भगवत गीता में कि भगवान की कृपा से किसी को 3-4 बच्चा हो गया हो और भगवान की कृपा से बेकारी आ गई हो, बच्चों के लिए खाने का कुछ भी नहीं हो और वो बच्चे के लिए टलवलता है एक डोर से दूसरे डोर कि कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो, मेरे लिए नहीं मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। वैसे ही मद भक्ता मद भक्ति अर्थे, मेरा भक्त मद भक्ति अर्थे, मेरी भक्ति के लिए साधु सभा दो, साधुओं की सभा में जाकर भीख की तरह मांगता रहता है कि कुछ सुना दीजिए प्रभु जी, कुछ सुना दीजिए। इस तरह इस लोभता से कोई व्यक्ति श्रवण करने का, सत्संग में बैठकर श्रवण करने की उत्कंठा लालसा प्रकट करता है, तो निश्चित रूप से भागवत में लिखा गया है तत्क्षणात् हरि उसके हरि भगवान हरि उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह श्रवण करने की विधि है कि लोभता से लोयम शब्द रूप गोस्वामी ने कहा है कि इसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाना, लोभ प्रकाशित हो जाना कि इस वस्तु को प्राप्त करनी है। जब लोभ प्रकाशित हो जाएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। यही पात्रता कही गई है भक्ति की, लोभ तत्र लोयम अपि मूल्यम एकलम, अपि मूल्यम एकलम, एकम मूल्यम एक ही कीमत है, क्या है उसके प्रति लोभ। जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, दूसरी कोई साधनों से दूसरी कोई वस्तु से नहीं प्राप्त होगी, लोभ के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर इस प्रसंग में बहुत सुंदर श्लोक है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा में प्रसिद्ध मुनियों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों सब के साथ राज्यसभा में बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करके भगवान युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्या कहा कि मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राशु यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ, हे प्रभु हमारे इस प्रयास को सफल बनाए। युधिष्ठिर महाराज ने इच्छा जताई क्या, राजसु यज्ञ करने की। श्रीपाद श्रीधर स्वामी भागवत के एक महान टीकाकार हो गए। जिनके विषय में कहा गया है कि व्यासो वेति शुको वेति राजा वेति न वेति वा श्रीधर सकलम वेति भगवान ऋषि प्रसादित। भागवत के शब्दों का मर्म कौन कौन जानता है, तो व्यास वेति व्यास जी जानते हैं, है ना, जिन्होंने लिखा वह व्यक्ति जानता है कि भागवत के इस शब्द का क्या अर्थ है। शुक वेति जो कहने वाला है वो जानता है, राजा वेति न वेति वा, लेकिन परीक्षित जानता है कि नहीं जानता है मालूम नहीं है, क्योंकि सुना है लेकिन वो बोले वो जान, यद्यपि वो जानते हैं लेकिन ये भाव है श्रीधर स्वामी की महिमा को बढ़ाने के लिए। लेकिन श्रीधरम सकलम वेति, श्रीधर स्वामी है भागवत के एक एक शब्द के एक एक अर्थ को जानते हैं। क्यों जानते हैं, नृसिंह प्रसादित, भगवान नृसिंह की कृपा से श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं, कौन सा शब्द क्या भाव में प्रकट किया गया है भागवत में वह सब जानते हैं। वह श्रीधर स्वामी ने एक प्रश्न भगवान की ओर से कहा कि मान लीजिए भगवान कहे कि चक्रवर्ती नो मनोरथम, ये तो चक्रवर्ती का मनोरथ है, रासुई कौन, रासुई यज्ञ कौन कर सकता है, जो पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया होता है वह व्यक्ति राशु यज्ञ कर सकता है। तो अभी तो जरासंध इत्यादि शिशुपाल इत्यादि सब तो बाकी थे, उन पर तो विजय प्राप्त हुआ नहीं था, तो क्यों ऐसा मनोरथ कर रहे हो। मान लीजिए भगवान की ओर से उत्तर आया कि क्यों ऐसा मनोरथ, चक्रवर्ती सम्राट जैसा मनोरथ क्यों कर रहे हो। तब युधिष्ठिर महाराज अपने विश्वास के साथ, भक्ति का जो प्राण है विश्वास, उसके साथ इस श्लोक की अवतारणा करते हैं कि तत्पादुके अविरतम परिये शरन्ति ध्यायन्त भद्रनशने सुशियो गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम आशासते यदि त आशिष ईश नान्य। हे कमलनाभ, कमलनाभ संबोधन दिया गया इस श्लोक में। कमलनाभ का दो अर्थ होता है, शिवाजी जीव गोस्वामी ने अर्थ किया है कमलनाभ मतलब जिसका नाभि से कमल उत्पन्न हुए और उस पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, है ना, तो इसमें भगवान की ऐश्वर्यता को प्रकट की गई है कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, मतलब जिसके नाभि कमल से जो जीव प्रकट हो जाए वो इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ जीव हो जाता है ना। और कमलनाभ एक दूसरा अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिसकी नाभि कमल जैसी है, मतलब भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दोनों बातें, ऐश्वर्य का भी वर्णन किया गया है और सुंदरता का भी वर्णन किया। तत्पादुके अविरतम परिये चरंति ध्यायन्त भद्र नशने सुचियो गणंति। सुचियो, ये सुचियो जो पवित्र चित्त लोगों, जिनका चित्त पवित्र हो गया है अथवा जो पवित्र होना चाहते हैं, वह व्यक्ति त्वत पादुके, आपकी पादुका कैसी है? अभद्र नशने, समस्त अभद्र को नाश। भद्र का अर्थ होता है कल्याण और अभद्र का अर्थ होता है इससे विपरीत। तो अभद्र नाश करने वाली त्वत पादुके अविरतम निरंतम परिचरंती, जो परिचर्या करते हैं, सिद्ध स्वामी करते हैं देह है ना, भगवान की परिचर्या हम लोग करते हैं ना, सुबह में गुरु पूजा के बाद परिक्रमा करते हैं ना, तो देह ने परिक्रमा करता है। ध्यायन्त मतलब ध्यान करता है, मनसा, मन से ध्यान करता है, और गृणंती, गृणंती मतलब गाता है वाणी से, हरे कृष्णा गृणंती मतलब गाना। भागवत में, गीता में या अन्य अन्य शास्त्रों में जहां जहां भी गृणंती की बात आई है, वहां वहां आचार्यों ने एक ही मत दिया है कि भगवान का नाम यद वृत्ते। एकादश कंद में महाराज निमि ने प्रश्न किया नव योगेंद्र, तो वहां पर कहा गया यद वृत्ते, वो क्या बोलता है, भगवान का भक्त क्या बोलता है, तो वहां पर अर्थ किया गया है हरि नामानि इति वृत्ते, भगवान का नाम बोलता है, भगवान के नाम के अलावा और कुछ भी बात नहीं बोलता। बोलना मतलब हरि कथा लीला, बस भगवान के भक्तों के लिए बोलना मतलब क्या, भगवान की कथा बोलना और भगवान का नाम बोलना, यही गृणंती यही वृत्ते। सब जो भी शब्द गृणंती वृत्ते जो भी भागवत में आया, वहां सब जगह एक ही अर्थ किया गया है हरि नामानि इति वृत्ते। कलयुग का परम धर्म क्या है? कलर दोषे निधे राजन एको अस्ति, क्या कीर्तना देव, बस और कुछ नहीं। यद्यपि भगवान के नाम की बहुत बड़ी बड़ी महिमा की गई है, गाई गई है ना शास्त्रों में भगवान की महिमा के, गो कोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास, कोई इतना दान कर दे, कोई इतना पर्वत सुमेरु पर्वत हरोष दान में दे, तो गोविंद के नाम के एक अंश के समान भी नहीं है, है ना। हरि इति दो अक्षर का उच्चारण कर दे तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है, कोई क्री और स्न बोल दे तो ये हो जाए, ये सब बहुत बहुत महिमा दी गई है, ये सब आप जानते भी है, लेकिन ये सब कहने मात्र से फिर भी एक अंश मात्र भी भगवान की महिमा को नहीं कहा गया। इतना कहने के बाद भी भगवान के नाम का जो महात्म्य है, उस महात्म्य को एक अंश भाग बराबर भी प्रकाशित शास्त्रों नहीं कर पाए। काशी की एक घटना है कि एक बार एक सेठ था, एक सत्य घटना है, एक सेठ था, उसको कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, कुष्ठ मतलब जानते हैं ना, वो व्हाइट व्हाइट शरीर में हो जाता है, कोट गुजराती में कहते हैं उसको, हाँ कहता, हाँ कुष्ठ रोग हो गया और उसका शरीर गलने लगा। तो स्वाभाविक इस संसार का एक स्वभाव है कि किसी भी व्यक्ति कोई ज्यादा दुख में है या किसी को बहुत बड़ा रोग हो जाता है तो परिवार संसार उसको त्याग देते है ना, उसके प्रति बहुत गलत व्यवहार करते हैं। तो सेठ था, धन था, लेकिन फिर भी रोग से पीड़ित था, इसलिए कोई व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो उन्होंने मन ही मन ऐसा सोचा कि अब मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। तो एक दिन वो गंगा के किनारे गया, वहां उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा गंगा में। तो हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, जिससे कि कभी कभी मुश्किल में समय में व्यक्ति ऐसा होता है कि बाहर आ जाने का प्रयास हो जाता है, एक बार निर्णय हो जाता है कि ऐसा कर दूं, लेकिन नहीं होता है तो कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी प्रतिज्ञा लोग ले लेते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती है तो ठीक है अब जाने दीजिए ना जो भी हो गया हो, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये सोचा ये पक्का निर्णय कर लिया था, तंग आ गए थे कि अब तो ये शरीर को छोड़कर ही रहूंगा, तो बांध दिया। तो सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, वहां से भगवान के भक्त, उसका नाम था पद्मनाभ जी, वो गुजर रहे थे। तो उन्होंने भीड़ देखकर कहा कि क्या हो रहा है, तो सब लोगों ने बताया कि ऐसे मरना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि उनको छोड़ दीजिए, जल्दी उसको छोड़ दीजिए। तो उनको छोड़ दिया था, सब ने कहा कि ये, उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो उसको कहा कि तीन बार आप राम नाम ले लीजिए और गंगा में डुबकी लगा दीजिए, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कहा, जिन्होंने पद्मनाभ जी ने जो कहा था वैसा ही किया, तीन नाम लिया, राम राम राम। एक राम से कुष्ठ रोग खत्म हो गया, दूसरे राम नाम से वो जो शरीर गल रहा था वो अच्छा हो गया, और तीसरे राम नाम से उसका शरीर की क्रांति स्वर्ण जैसी बन गई। तो अभी हरि बोल दे रहे, इस कथा का अंत आएगा तब हरि बोल होगा। आप लोग थोड़ा घाय कर देते हैं, हृदय में रखे हैं। तो यह देखकर सब लोग आश्चर्य, वो शेर तो भक्त हो गए, हो ही गए, राम नाम में उसकी निष्ठा लग गई और आजीवन उसको राम नाम में बिताया, हरि नाम लेने में बिताया। लेकिन वहां पर जो इकट्ठे हुए थे लोग, वह भी इस चमत्कार को, राम नाम के चमत्कार को देखकर भक्त हो गए। लेकिन वो पद्मनाभ जी थे, उसको मन में थोड़ा अहंकार जैसा हो गया कि आज गुरु को कहूंगा तो कुछ इनाम मिलेगा, कुछ प्रशंसा होगी कि पद्मनाभ जी तूने बहुत अच्छा काम कर दिया ना। तो कबीर जी के पास गए और सारी घटना सुना दी, और बिल्कुल एक वैसी घटना कबीर जी के पुत्र, उसका नाम क्या था, कुणाल, कुताल, कमाल, कमाल, कमाल के साथ हुई थी। तो उन्होंने वहां पर जाकर कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कबीरदास जी ने कहा कि तूने ऐसे एक शूद्र काम के लिए राम नाम का तीन बार प्रयोग किया। उन्होंने दोहा लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा, और इस दोहा लिखा था इस प्रकार, डूबा वंश कबीर का उपजे पुत कमाल। कबीर का वंश डूब गया, क्यों डूब गया, इसके जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। है ना, कभी कभी पुत्र, पुत्र इसको कहते हैं कि जो पितरों को उद्धार भी कर दे, पितरों का, तो डूबा वंश कबीर का उपजे पुत कमाल। राम नाम तीन बार राम नाम लिया, इसके बाद पूछे कि उसको कोट निहाल, बेहाल करने के लिए, कोट को दूर करने के लिए तीन नाम, तीन बार राम नाम का प्रयोग किया, ऐसा दोहा लेकर गोस्वामी के पास। तो गोस्वामी वहां पर गए और वहां पर उन्होंने कहा कमाल ने कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो गोस्वामी जी समझ गए कि राम नाम को इससे ज्यादा प्रकाशित करने के लिए ये मेरे पास कबीर जी ने भेजा है। तो कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने एक आदेश दे दिया कि इस वाराणसी काशी में जितने जितने भी कोढ़ी है, जितने जितने भी कुष्ठ रोगी है, उन सबको इकट्ठा करो, क्या तुलसीदास जी सबका कोढ़ दूर करेंगे, सबको बुला लो। शाम को 4-5 बजे तक 500 कोढ़ी इकट्ठे हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्ते पर राम नाम लिखा और एक एक घड़ा गंगा जल मंगवाया, तो उसमें पीस कर उसमें मिश्रित मिला दिया, और उसके शिष्य को आदेश दे दिया कि सबके पर थोड़ा थोड़ा छिटक दो। जिस जिस व्यक्ति पर छिटक देते उसका कोट तुरंत सुमंत्र गायब हो जाता था। 500 बिना डॉक्टर, बिना चिकित्सा, बिना कुछ, 500 का कुष्ठ रोग तुरंत समाप्त एक हरि नाम से। तो उसका पुत्र कमाल था, वो आश्चर्यमय हो गया, वो 500 लोगों का कोट एक राम नाम से हो गया कबीर जी के पास। फिर भी कबीर जी संतुष्ट नहीं हुए। कबीर जी ने इसमें और एक दुहा ऐड करके सूरदास जी के पास उसके पुत्र को भेजा। इस दुहा में इतना ऐड किया था उन्होंने कि 500 कोटी एक राम नाम से 500 कोटी कियो बहाल, एक राम के नाम से 500 कोटी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोट दूर किया, क्या कीमत हुई राम नाम की लाल, ऐसा करके दुहा लिखा। तो कि राम नाम की क्या कीमत, सूरदास जी तो सूरदास जी इतनी इज्जत देते, कमाल को कहा के पढ़ो, पढ़ाया सुना तो वो समझ गए कि राम नाम के महात्म्य में इसकी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कमाल को कहा कि कमाल है, गंगा में जो मुर्दा बहता है ना उस मुर्दे को उठा कर ले आओ। तो मुर्दे को उठाकर वो कमाल लाया, तो सूरदास जी ने उसके कान में जाकर र बोला, तो र बोलने मात्र से वो मुर्दा बैठा हो गया और घर पर चला गया। कमाल की आंख फट गई। र राम नाम में तीन शब्द, तीन अक्षर है ना, र अ और म, उनमें से तृतीयांश सिर्फ तीसरा भाग राम नाम का र बोलने से मुर्दा व्यक्ति जीवित होकर अपने घर चला गया। तब कमाल ने ओहो राम नाम की महिमा, फिर ये भी राम नाम की महिमा नहीं है। स्मरण मात्र से अभी लिया नहीं है, लेने की इच्छा मात्र से व्यक्ति के सभी प्रकार के सभी ओर से पाप भागने लगते, पाप चलने लगते। ये राम नाम की महिमा है, ये तो महिमा है, महिमा महात्मा, लेकिन उसका माधुर्य है, मधुरता भी इसमें है। कभी कभी कुछ कुछ साधनों में कुछ कुछ साधनों की महिमा होती है ना, लेकिन उसका माधुर्य नहीं होता है, उसमें मधुरता नहीं होती है। लेकिन गौड़ी वैष्णव के लिए ये महात्मा नहीं है। गौड़ी वैष्णव के लिए क्या महात्मा है, राम नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसलिए बृहद भागवतामृत में श्रीपद सनातन गोस्वामी ने राम नाम की चार विशेषता दी है। पहली विशेषता राम नाम की, राम मतलब कृष्ण नाम की, यह है कि इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है और गोलोक में भगवान से कृष्ण दर्शन दे देते हैं। किसको, नाम लेने वाले व्यक्ति को, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है राम नाम की, भगवत नाम की, कृष्ण नाम की, क्या है, को प्रेम के अतरंग साधनों में स्मरण और मनन होता है। सिद्ध अवस्था में हो जाते हैं ना, वो स्मरण और मनन में रहते हैं, भगवत लीला स्मरण करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। लेकिन साधक अवस्था में जीव से स्मरण मनन नहीं होता है ना, वो तो हमको ही पता है कि हम अकेले रहते हैं तब हमारा मन हमारा चित्त कहाँ पर वास करता है ना। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुखदेव। मैं देख रहा था आप सब श्री राधा गिरधारी के सामने ही देखते थे, आज जगन्नाथ जी के सामने कोई नहीं देखते। गिरधारी प्रभु ड्रेसिंग ऐसा करते हैं ना कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि गिरधारी के सामने ही देखता रहूं। जय श्री श्री गौर निताई की जय। तो क्या बात हो रही थी काका, हाँ अतरंग साधन स्मरण और मनन है। हाँ हाँ वहां पर ही थे ना, तो अतरंग साधन है तो। लेकिन हम मेरे और आपके चित्त में स्मरण मनन नहीं होता है ना, चित्त संसल रहता है। तो चित्त की संसलता को दूर कौन करता है, महाप्रभु कहते हैं से तो दर्पण मार्जनम। उस सिद्ध अवस्था के लिए भी नाम ही सरल उपाय और परम उपाय है, ये दूसरा विशेषता है। तीसरी विशेषता, दूसरे साधनों के लिए निर्जनत्व एकाकी इत्यादि की जरूरत होती है ना। कभी कभी योग इत्यादि करने के लिए कोई व्यक्ति डिस्टर्ब न करे, कोई व्यक्ति हिला न दे है ना, ऐसी आशंका रहने रहती है तो व्यक्ति अकेला भाग जाता है जंगल में या कहीं पर, या तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां व्यक्ति अपना साधन नहीं कर पाता। लेकिन नाम एक ऐसा है कि अकेला भी व्यक्ति कर सकता है और भीड़ में भी कर सकता है, ये उसकी तीसरी विशेषता है ना। और चौथी विशेषता क्या है, जब जीवा पर नाम स्फुरित हो जाता है तो मधुर रस से समग्र इंद्रियों को प्लावित कर देता है, समग्र इंद्रियों में रस प्रदान कर देता है, ये उसकी माधुरी है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में नाम माधुरी का एक श्लोक लिखा है, तुंडे तांडवतिम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, तुंडे तांडवनिम, तुंड का अर्थ होता है मुख और तांडवनी का अर्थ होता है तांडव करना, नृत्य करना। जब मुख में श्री कृष्ण नाम आता है तो क्या होता है, तुंडावली लब्धये, हजारों हजारों मुक्त प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है और कर्ण क्रोध कर्ण के छिद्र में जाता है तो अर्बुद कर्ण प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, चेतन प्रांगण और चित्त में जाता है तो हृदय के चित्त की जितनी भी इंद्रिया है उन इंद्रियों का व्यापार स्थिर हो जाता है। इंद्रियों का कार्य अटक जाता है, न जाने जनिता क्रियत भी मृते कृष्णे इति वर्णन द्वयी, सांदी मुखी जी के और इसके संवाद है, नांदी मुखी और पौर्णमासी के संवाद में यह श्लोक लिखा गया है राधा रानी के विषय। कृष्णे इति वर्ण द्वयी, कृष्ण इति वर्ण, कृष्ण में दो वर्ण है, एक और क्री और एक दूसरा श, ये क्री और श्न ये दो वर्ण है, इस दो वर्ण में कितना अमृत भरा हुआ है न जाने जनिता, ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब वो मुंह में आता है तब हजारों हजारों मुख प्राप्त करने की चेष्टा होती है, जब वही नाम कान में जाता है तो अर्बुद कान प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है और चित्त के प्रांगण में जाता है तो समस्त इंद्रिया जितनी भी इंद्रिया उसका व्यापार शब्द हो जाता है, उसका कार्य अटक जाता है। इसलिए हे सखी, ये मैं नहीं जानती हूँ कि इस नाम में, कृष्ण नाम में कितना अमृत भरा हुआ है, हो सकता है कि दूसरे साधनों में इतना अमृत नहीं है, नहीं होता है। नाम विरह प्रकट करा देता है और नाम ही विप्रलम्ब और संभोग प्रदान करता है। सबसे पहले राधा रानी ने विरह अग्नि में नाम संकीर्तन किया था, इस महामंत्र का गान किया था। सबसे पहले राधा रानी विरह अग्नि में नाम कीर्तन किया था, एक श्लोक गाया था राधा रानी ने, अई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदयम तद लोक कातरम दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, भगवान कृष्ण मथुरा गए तब उसके विरह में श्रीमती राधा रानी ने एक श्लोक गाया, उस श्लोक को सुनकर वृंदावन में जितने भी लता पता जितने भी वृक्ष के उसके सब पर्ण गिर गए। अई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ, बहुत सुंदर सुंदर भाव है अई दीन दयाद्र नाथ कहने का, मथुरा नाथ कहने का, लेकिन पूरे श्लोक का मूड यह है कि हे दीन दयाद्र हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से कब मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी, हृदयम त्वद लोक कातरम दयित हे दयित, हे प्राणेभ्योपि प्रिय हे प्राण से भी अधिक प्रिय, मैं कब आपका दर्शन कर पाऊंगा, मेरा हृदय कातर हो रहा है विह्वल हो रहा है आपका दर्शन के लिए, भ्राम्यति किम करोमि हम, मैं क्या करूं। इस श्लोक को सुनकर वृंदावन में जितने भी लता पता जितने भी वृक्ष के सब गिर गए, विरह अवस्था का श्लोक। इसके बाद राधा रानी ने नाम संकीर्तन किया और विरह अग्नि शांत हो गई। तो ऐसा भी संतों का मत है कि विरह अग्नि से निकला हुआ नाम है, इसलिए पहले विप्रलम्ब का रसा स्वादन कराता है और विप्रलम्ब के रसा स्वादन के बाद संभोग, मिलन को संभोग कहते, तो संभोग मतलब शांत करने के लिए भी यही महामंत्र, इसलिए महामंत्र को साधन और साध्य दोनों भी कहा गया है। घड़ियाल के सामने देखना पड़ेगा वरना नहीं नहीं
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे
ये नाम का अद्भुत माधुर्य है। ये सिर्फ गौड़ी वैष्णवों ने प्रकाशित किया है। ये मधुरता, ये प्रश्न हो सकता है तो हमको क्यों ये कड़वा लगता है, तो हमको तो पीलिया हो जाता है तब शक्कर भी कड़वा लगता है ना, तो इसमें शक्कर का कोई थोड़ी ना गलती है कि किसी की फैक्ट्री में हमारे लिए कोई स्पेशल शक्कर नहीं आती है कि हमको कड़वा है ना, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, भगवान के नाम के प्रति अपराध और वैष्णवों के प्रति अपराध। नाम की महिमा जानी हम लोगों ने, नाम का माधुर्य कुछ अंश के लिए जाना, अब नाम प्रभु की कृपा जानिए, नाम प्रभु की विशेषता क्या है, उनकी कृपा की विशेषता क्या है। सबसे पहली कृपा नाम प्रभु की अभिनत्व नाम नाम ने, यद्यपि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है ना, जितनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण में है उतनी शक्ति भगवान के नाम, लेकिन कभी कभी संत गण वैष्णव गण कुछ भाव को प्रकाशित करने के लिए नामी से भी ज्यादा नाम की शक्ति को प्रकाशित करते हैं। जैसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने एक श्लोक में लिखा है, एक भाव प्रकाशित किया है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने पद्यावली में, वह श्लोक उद्धृत किया है कि हे प्रभु निर्णय आपको करना है, भगवान को निर्णय करना है कि आप बड़ा, आपको बड़ा कहो कि आपके नाम को बड़ा कहो, इसका कारण कहते हैं। क्या कारण कहते हैं कि हे प्रभु जब से जीव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक आप सभी के हृदय में वास करते। किसके हृदय में परमात्मा नहीं है, कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है कि जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है? नहीं, सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, ये बात निश्चित है, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ कि परमात्मा ने आकर कहा कि अब तेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना है, चल मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ इसलिए तेरे को डायरेक्ट गोकुल में या तो वैकुंठ में ले जाता हूँ, आज तक ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वही प्रभु आपका नाम जब किसी जीव के जीव के अग्र भाग पर आ जाता है तो अग्र भाग पर आने मात्र से वह व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो प्रभु आप बताइए कि मैं आपको बड़ा कहूँ कि आपको नाम को बड़ा कहूँ, है ना? तो भाववश कभी कभी संतगण ऐसा कहते हैं और नाम कृपा, नाम की नामी से विशेष कृपा भी बताई गई है। कैसे? तो भगवान इस संसार में आते हैं, कुछ प्रयोजन होते हैं, अवतार का कुछ प्रयोजन होता है, कभी कभी अलग अलग कारण दिया जाता है सत्संग सभा के अनुसार, कभी कोई दुष्टों का दमन करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला श्रवण के, बहुत सारे सारे, लेकिन फिर भी भगवान निश्चित कुछ काल तक रहते इस संसार में, तब तक के लिए कुछ दुष्टों का उद्धार वो कर देते हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं या तो अपने धाम में चले जाते हैं, जो भी कहिए। लेकिन भगवान का नाम चिन्मय है, स्वयं प्रकाश नित्य स्वरूप है, अभिनत्व है, वह भगवान का नाम कृपावश इस संसार में ही रह जाता है और भगवान कुछ गणे गाठे को, है ना, उद्धार करता है, लेकिन भगवान के नाम तब से लेकर आज तक करोड़ों लोगों का उद्धार करता रहता है, है ना? चिन्मय होते हुए भी जब जीव उसका स्मरण करता है तब नाम आ जाता है ना, मैं अभी इच्छा करूं कि भगवान का दर्शन मुझे हो जाए तो नहीं खुलेगा, है ना? भगवान दर्शन देंगे मुझे? नहीं देंगे। लेकिन मैं इच्छा करूं कि हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
ये नाम की एक विशेष कृपा है जीवों पर कि जब जीव स्मरण करता है तब उसके चिन्मय होते हुए भी स्वयं प्रकाश होते हुए भी नाम प्रभु जीव पर आ जाते हैं। स्मरण करने से भी नहीं, वहां तक हमारे गौड़ी आचार्यों ने कहा स्मरण करने से भी नहीं, तो अनायास कैसे कभी कभी जमाए लेते पर है ना, तब हम नहीं ऐसा नहीं सोचते कि राम 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 बोलो जमा आ जाए ना, कभी लड़ थड़ाते हैं, कभी डर में, कभी भय में, कभी स्वप्न में है ना, हम सोचते भी नहीं और राम नाम हमारे मुख से उच्चारण हो जाता है। यह नाम प्रभु की एक विशेष कृपाई है ना। तो इस तरह नाम की बहुत बहुत नाम प्रभु की कृपा, लेकिन दुर्देव महाप्रभु क्या कहते हैं, दुर्देव मीदृश मिहाजन नानुराग, दुर्भाग्य है हम सबका, क्या दुर्भाग्य है, इतनी इतनी महिमा र बोलने मात्र से जिंदा मुर्दा हो जाता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, दोनों बात है, जिंदा भी मुर्दा हो जाता है, मुर्दा भी जिंदा हो, कृष्ण प्रेम में मत होना पागल हो जाना वो जिंदा मुर्दा है, अरे बोल मुर्दा जिंदा उसको कहते हैं के गंगा में कप्रवाह में र बोलने से हो गया ना जिंदा। जपिते जपिते नाम प्रेम उपजय ताहार श्लोक शून्य स्वरूप राय रामानंद। नाम की एक विशेष असाधारण कृपा यह है नाम शब्द से, नाम धातु से नाम शब्द बना हुआ है ना, नम का अर्थ होता है झुकाना, नम यति इति नाम, जो झुका दे किसको झुका दे, नाम और नामी को, नाम लेने वाले को और नामी को, इन दोनों को झुका देता है। नाम लेने वाले को कैसे झुकाता है भाई, नाम लेने वाले को क्यों झुकाता, नाम लेने वाले को देहाभिमान रूपी पर्वत, देहाभिमान है ना, देहाभिमान रहता है, मैं हूं करके, मेरा है, मेरे पास इतना है, कुछ काम का नहीं है, जितना ज्यादा धन है उतना ज्यादा अनर्थ आने की संभावना है। सुबह में जो प्रसंग चल रहा है ना, श्रीमद् भागवत के अनुसार ही कह रहा हूं मैं कि जितना ज्यादा धन है उतना ज्यादा भक्ति छूटने की संभावना है। धन में मुख्य रूप से तीन दोष है और धन रहित में एक ही दोष है तृष्णा। गरीब व्यक्ति तृष्णा, तृष्णा मतलब मिल जाए मिल जाए मिल जाए पूरे दिन करता रहता है, और एक तीन मतलब धनी व्यक्ति में स्वयं एक दोष है धन होना, मेरे पास है करके हो ही जाता है, मैंने इतना दिया मैं इसलिए पहले प्लेट लूंगा, ऐसा हो जाता है, सेवा भाव नहीं रहता है। जो व्यक्ति ज्यादा डोनेशन देता है ना अहंकार हो ही जाता है, सेवा भाव छूट जाता है, कैसा नहीं कि सब वैष्णवों की सेवा के लिए दिया है मैंने, मुझे लास्ट में लेना है तो मैंने पहले दिया तो मैं क्यों लाइन में खड़ा रहूंगा, ऐसा हो जाता है। धन स्वयं एक दोष है, धन से अभिमान अहंकार आ जाता है और तृष्णा तो रहती है, इसलिए भगवान का भक्त दोनों को मिलता है ना, तो निर्धन है ना उसको तृष्णा एक दोष है वो जल्दी निकल जाता है, इसलिए भगवत भक्त में प्राय देखा जाता है जो निर्धन है वह व्यक्ति प्राय जल्दी भक्त बन जाता है, और धनी व्यक्ति पैसा के धन के मद से वो साधुओं को तो खरीदने की कोशिश करता है, और कलयुग के साधु है भाई,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
तो धन के प्रति साधु का मन भी थोड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है ना, चाहिए लैपटॉप अभी तो दो दो तीन दिन जाए, एक एक तो नहीं काका लैपटॉप तो जो भी है, लेकिन धन स्वयं एक दोष है, भगवान की सेवा में लगाने से वो दोष छूट जाता है, यह सही बात है। तो नाम कहाँ से, क्या क्या बात चल रही? हाँ धन का तीन, हाँ तो तीन तो बता दिया, इसकी कहाँ से बात आई? धन स्वयं एक दोष है, पहला हो गया धन से अभिमान बढ़ता है, दूसरा और तृष्णा, तीन कह दिया ना। तो हाँ नम शब्द से नम यति, नम का अर्थ होता है झुकाना, झुका देता है साधक को भी देहाभिमान, है ना, देहाभिमान रूपी पर्वत से झुका देता है, झुक जाता है। और जब साधक झुक जाता है मतलब तृणादपि सुनिश का भाव प्रकट हो जाता है, तृणादपि सुनिश है न तरोरिव सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। इस भाव में साधक को स्थित जब कर देता है तब भगवान के भीतर उसकी कृपा, एक शक्ति भगवान की है कृपा, कृपा शक्ति, जब कृपा शक्ति भगवान के हृदय में आविर्भूत हो जाती है तो सब शक्ति है वो शिथिल हो जाती है। तो वो नाम नामी को भी झुका देता है, ये यह एक असाधारण कृपा है नाम की। बिना साधन, बिना कोई साधन की सहायता के बिना दूसरे दूसरे भक्ति के अंग है, दूसरे दूसरे साधना के अंग है, उस सभी अंगों में जब तक भगवान के नाम नहीं लिया जाता तब तक वो साधन की पूर्ति नहीं होती, है ना। लेकिन भगवान नाम स्वयं प्रकाश है, है ना। तो इसी से किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता, अपने आप में पूर्ण है, यही उसकी असाधारण कृपा है। तो वैसे भगवान के नाम गृणंती कोई व्यक्ति गाता है, इस श्लोक में तीन बात बताई गई है। क्या? परिचरंती, कोई व्यक्ति भगवान की परिचर्या करता है, ध्यायंती, कोई व्यक्ति भगवान का मन से ध्यान करता है, और गृणंती, कोई व्यक्ति भगवान के अपनी वाणी से भगवान का नाम गाता है, हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
ते भवापवर्गम विदंती, वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है, भगवान उनके हृदय में आकर वास कर लेते, वो मुक्ति प्राप्त हो जाता है। और आशा सते यदि तो यदि आशा सते, वो व्यक्ति अगर भोग भी चाहता है तो आशीष वो उसको प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। इसे न अन्य पर श्रीपाद चक्रवर्ती स्वामी, श्रीपाद सीधर स्वामी लगते हैं कि चक्रवर्ती नो अपी, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अगर भगवान की कृपा नहीं है तो व्यक्ति वह एक तृण के दो भाग भी नहीं कर सकता, राजसूय तो बहुत बहुत दूर की बात है। देखिए एक दृष्टांत देखिए, बहुत माननीय भक्तों के लिए है, सब के लिए है, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ है ना, समुद्र मंथन में अमृत निकला, अमृत कौन पिया? इस समुद्र मंथन के प्रसंग को उपसंहार करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया। समुद्र मंथन का सुखदेव गोस्वामी सिद्ध स्वामी कहते हैं, समुद्र मंथन का सार प्रस्तुत किया, समुद्र मंथन का प्रसंग क्यों कहा गया, ये पूरा तीन चार अध्याय में जो कहना था वो क्यों कहा, वो इसको एक श्लोक में कह दिया, एक नहीं दो श्लोक में कहा, लेकिन एक श्लोक में उसका सार प्रकट किया। क्या कहा? एवं सुरासुर गणा समदेश काल, एवं इस प्रकार, मतलब आगे समुद्र मंथन जिस प्रकार किया गया उस प्रकार सुर असुर गणा देवता और दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया सम देश काल, देश एक ही था, काल काल एक ही था, है ना, हेतु एक ही था, अर्थ एक ही था, कर्म एक ही था, बुद्धि भी एक समान लगी हुई थी, फिर भी फले विकल्पा, फल में भेद हो गया। बहुत लोग कहते ना कर्म 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 कर्म, असुरों ने कर्म किया फिर भी फल नहीं मिला। समान था, देवताओं ने एक देश था, एक काल था, एक हेतु था, एक कर्म था, बुद्धि भी सेम लगी हुई थी, फिर भी फले विकल्पा, फल में भेद हो गया। तत्रामितम सुरगणा फल मंजसायु, तत्र अमृतम सुरगणा, सुर मतलब सुरगणा मतलब देवताओं ने वो अमृत प्राप्त कर लिया, कैसे, अंजता पा लिया सरलता से। क्यों पा लिया, क्यों फल में भेद हो गया, कहते यत्पाद पंकज रज श्रणयात, देवताओं का सबसे बड़ा एक गुण था, वह गुण क्या था, यत्पाद पंकज रज श्रणयात, वो भगवान के आश्रित थे, शरण रज के आश्रित थे, न दैत्या, दैत्यों का इतना ही दोष था। यद्यपि कहा जाए तो दैत्य लोगों ने भगवान की बुद्धि से देवता लोग चले थे, इसलिए दैत्य लोगों ने ज्यादा परिश्रम किया था समुद्र मंथन में। जब जब देवता गए भगवान के पास, जब देवता गए भगवान के पास, भगवान ने सब कह दिया कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, देवता जाने लगे कि ठीक है भगवान के, तुम क्या थोड़ा था, पाचा वालो ये क्या है, हाँ देवता लोग कहने लगे क्या अब क्या बाकी रहा है, आप लोग पहले मुख पकड़ लीजिए, तो आप लोग जब मुख पकड़ेंगे ना तब असुर लोग कहेंगे कि हम शक्तिशाली है, हमको मुख के पास, आप पूछ के पास रहिए, तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, सीधा पूछ के पास चले जाइए, मुख से अग्नि निकलेगी, जहर निकला था तो असुर लोग बेहोश हो जाएंगे। तो देवता का तो परिश्रम तो असुर लोगों ने ज्यादा किया था, अभी ढाई बज गए, अभी इतना नहीं हो पाएगा। तो असुरों ने ज्यादा परिश्रम किया था ना, फिर भी फल में भेद हो गया, एक ही कारण से फल में भेद हो गया। भक्तों क्या वो भेद था, देवताओं भगवान के आश्रित थे, असुरों इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी भगवान के आश्रित नहीं थे, इसलिए उसको फल नहीं प्राप्त हुआ। वही भाव यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते, अगर कोई व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हुए भी अगर भगवान के आश्रित नहीं है तो व्यक्ति एक तृण के दो भाग भी नहीं कर सकता। और मैं जानता हूँ भगवान के, मैं चक्रवर्ती सम्राट न होते हुए भी आपके आश्रित हूँ, आपकी कृपा पर निर्भर हूँ, आपकी कृपा से मेरा राष्ट्र यज्ञ पूर्ण होगा। यह विश्वास है, यह विश्वास ही भक्ति का प्राण है। इसी बात को कह रहे आशा सत्य यदि तो आशीष ईश न अन्य, न अन्य मतलब चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अगर भगवान आपकी कृपा नहीं है तो व्यक्ति चक्रवर्ती होते हुए भी नहीं प्राप्त कर सकता। हरे कृष्णा। मैंने कहा ही नहीं है कि मैं प्रश्न मैं समर्थ ही नहीं हूँ।
आपने नाम का महिमा बहुत बताया।
एक मिनट अंकल का प्रश्न,
शक्ति है नाम में, क्या कारण है,
नाम नाम कार्य बहुधा निध सर्व शक्ति स्तरार्पिता नियमिन स्मरण न काल, वही आपको सुनना था, मुझे मालूम है। महाप्रभु ने कहा है कि नाम नाम कार्य जितने भी योग में तप में ध्यान में दान में जितने भी अंग है उस अंग सभी अंगों से शक्ति बढ़ोकर भगवान ने नाम में भर दी चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए नाम का इतना महात्म्य है। ठीक है, हरे कृष्ण।